प्रधानकारी होना चाहिए हर जीव का भगवान का नाम लेना, क्योंकि केवल भी प्राप्त हो सकती है। भौतिक सिद्धि की बात तो दूर है, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम, जिसमें ये चारों चीजें प्रकट हो जाती हैं, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला। कृष्ण के नाम का भी रूप है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, तो ये रूप भी हरि नाम का हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। और हरिदास ठाकुर कहने लगे कि इस जगत में केवल दो चीजें आध्यात्मिक हैं, एक है जीव मतलब जीवात्मा और दूसरा है हरिनाम, हरिनाम लेना चाहिए, बाकी सब यहां भौतिक है। तो जीव हरिनाम लेता रहेगा तो फिर इस भौतिक जगत से निकलकर वो जा पाएगा भगवान के धाम में, कृष्ण प्रेम को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेगा। इसलिए जीव को हरिनाम लेना चाहिए, लेकिन किस तरह का हरिनाम लेना चाहिए? हरिदास ठाकुर कहते हैं दो तरह के हरिनाम होते हैं, यह आपने सुना है कभी? एक को मुख्य हरिनाम कहते हैं और दूसरे को गौण हरिनाम। गौण बोलते हैं ना, सेकेंडरी, क्या बोलते हैं? गौण, गौण मतलब प्रमुख और जो प्रमुख नहीं है, मुख्य प्रमुख। प्रमुख नाम के कौन से हैं भगवान के? जो कि भगवान की सुंदर लीलाओं से संबंधित है। आपको उदाहरण दे सकते हैं भगवान के लीलाओं से, उनके गुणों से, आध्यात्मिक गुणों से संबंधित, उनके सुंदर रूप से संबंधित कौन से नाम हैं? दामोदर, कितने सारे। उनके गुण रूप और लीला, इन तीनों के संबंध में कृष्ण के नाम बोलिए, भगवान के नाम बोलिए, गोपाल, गोविंद, गिरिवरधारी। गिरिवरधारी किस पे आधारित है? लीला के ऊपर। गोविंद लीला के ऊपर, गोपाल लीला के ऊपर, और मदन मोहन ये क्या है? गुण के ऊपर आधारित है या उनके रूप के ऊपर? क्योंकि उनका रूप इतना सुंदर है कि मदन को भी मोहित कर लेते हैं, मदन मोहन, वही उन्होंने कहा। और मुरारी, मुरारी मतलब मूर्ख को का वध करने वाला। और श्याम सुंदर, ये कौन से तीन गुणों में से किस पर आधारित है? रूप, गुण या लीला? श्याम सुंदर रूप। गोकुलानंद किस चीज के ऊपर आधारित? लीला। गो लीला करते आनंद करते हैं, लीला करते दूसरों को आनंद देते हैं और खुद भी आनंद लेते हैं। और माधव, माधव मतलब कई अर्थ हैं, ये भी भगवान के गुण के ऊपर इत्यादि आधारित है। राधिका रमण, गोपी जन वल्लभ, ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन, ये सब भगवान श्री कृष्ण के मुख्य नाम हैं, जो उनके मधुर लीलाओं से, उनके मधुर गुणों से, उनके मधुर रूप से संबंधित हैं। और ऐसे मुख्य नाम ज्यादातर भगवान कृष्ण के भक्त लेते हैं। माखन चोर, ये भी लीला के ऊपर आधारित। तो केवल भक्त जो हैं ये ऐसे नामों का उच्चारण करते हैं, और ऐसे नामों में सारे भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक जो गुण हैं वो इसमें हैं, संपन्न हैं। और ऐसे नामों का उच्चारण करने से श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है और हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन। जैसे कई नाम हैं जो कि विष्णु के लिए भी हो सकती हैं, कृष्ण के लिए भी हो सकते हैं। कोई उदाहरण? लीला, ऐसे मुख्य नाम कोई बात नाम बोल सकते हैं? विष्णु या कृष्ण दोनों को हो सकते हैं मुख्य नाम। राम, ठीक है, प्रभु रामचंद्र और कृष्ण, है ना, विष्णु भी भक्त वत्सल है, कृष्ण भी भक्त वत्सल है। तो जो भगवान को भक्त वत्सल कह के पुकारता है और इस रूप में विष्णु की पूजा करता है वो वैकुंठ जाएगा, लेकिन जो श्री कृष्ण की सेवा करेगा, कृष्ण को भक्त वत्सल कहेगा, वो गोलोक वृंदावन जाएगा। दोनों भक्त वत्सल कहते हैं, लेकिन एक विष्णु को एक कृष्ण को, तो दोनों की गति, हालांकि भगवान के धाम में जाएंगे, फिर भी भगवान के धाम के अंदर जाके फिर भी उनकी अलग दिशाएं होंगी। तो ऐसे मुख्य नामों का उच्चारण करके हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है या भगवत प्रेम मिल सकता है और हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो दूसरी ओर गौण नाम है। गौण नाम मतलब क्या, कोई उदाहरण? जो भी इस भगवान के इस भौतिक सृष्टि के कार्यों से संबंधित है उसको गौण नाम बोलते हैं। जैसे कि हरा, यज्ञेश्वर, सृष्टिकर्ता, परमात्मा, है ना। ज्यादातर ऐसे नाम वो लोग पसंद करते हैं जो कर्मकांडी हैं, मायावादी हैं, क्योंकि ऐसे नाम ज्यादातर वेदों में लिखे जाते हैं। कई ऐसे भगवद गीता के टीकाकार हैं या जो प्रवचनकर्ता हैं, हमने कई बार सुना है जब वो गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं तो वो कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। हम कर्नाटक में गए थे, ये दक्षिण में ही, हालांकि हम कन्नड़ समझते नहीं, लेकिन कृष्ण का नाम हमने सुना ही नहीं, लेकिन परमात्मा 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 बोलते रहते थे। अरे परमात्मा का कोई नाम है कि नहीं? श्री कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, ये भी सबसे सुंदर नाम है भगवान की, ये प्रमुख मुख्य नाम है। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं, मतलब उनको भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का ज्ञान नहीं है, कैसे भगवान इस सृष्टि में महान है उसका ज्ञान है। भगवान के धाम में परमात्मा नहीं है, परमात्मा का ऐसा रूप है भगवान का जो कि केवल भौतिक जगत में भगवान लेते हैं। इसलिए ऐसे जो नाम ज्यादातर या तो कर्मकांडी लोग लेते हैं या मायावादी लोग लेते हैं, तो ऐसे मुख्य नाम लेने से ज्यादा उनको क्या होगा, उनको कोई पुण्य का फल मिलेगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, कोई धन हो, कुछ ऐसा मिलेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा उनको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन भगवत प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें जोर किस किन नामों पे देना चाहिए? मुख्य नाम। तो मुख्य नामों के बारे में हम अगर चर्चा करते रहेंगे तो हम गोलोक वृंदावन जा पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य जब भजन लिखते हैं तो क्या कौन से नामों का ज्यादा प्रयोग करते हैं? कौन से नाम, जोर से बोलिए। मुख्य नाम की गौण नाम? मुख्य नाम। अभी यशोमती नंदन हुआ ना, ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन काना, गोपी पराण धन, मदन मनोहर, और गोकुल रंजन, फिर बाद में क्या, कालिय दमन विधाना, सब लीला के ऊपर, ये सब मुख्य नाम है। इस तरह से आचार्यों ने, खास करके गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने मुख्य नाम के ऊपर जोड़ दिया है। नामों में मिठास है, इनमें रस है, लेकिन दूसरे गौण नाम वो भी नाम है लेकिन ज्यादातर इतना रस नहीं है उनमें। कई बार हम देखते हैं दर्शन लेने जाते हैं वैसे प्रसिद्ध मंदिरों में, तरते उनकी प्रार्थना सुनाई देती, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हा? हे परमात्मा भगवान, हे कृष्ण, ऐसा नहीं, तो इस तरह से वो पुकारते हैं, मतलब उसमें उनको आनंद मिलता है, ठीक है कुछ है, लेकिन जो मिठास रस है इनमें गोपीजन वल्लभ, वो रस उसमें नहीं है। तो भारिदास ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मुख्य नामों का शरण हमें लेना चाहिए। फिर हरिदास ठाकुर बताते हैं कि नाम के तीन स्तर होते हैं या नाम लेने वाले के तीन स्तर होते हैं। पहली बात, जब वो पहला जप करना शुरू करता है तो अपराध युक्त जप होता है उसका, उस समय पूरी तरह से पाप नष्ट नहीं हो जाते, लेकिन जैसे जैसे वो जप करते रहता है तो पाप क्षीण होने लगते हैं, अपराध नष्ट होने लगते हैं, और फिर वो नामाभास के स्तर को पहुंचता है। नामाभास के स्तर में वो प्राय नाम को प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक शुद्ध नाम नहीं है, नाम का आभास है। और ऐसे नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मुक्ति इत्यादि मिल सकता है। अपराध युक्त नाम लेने से हमें भौतिक भोग मिल सकता है, नामाभास लेने से हमें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त करना हो तो हमें केवल कृष्ण अशुद्ध नाम चाहिए, नामाभास के भी ऊपर हमें चलना चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है वो वास्तव में कृष्ण प्रेम, लेकिन जब हम हरि नाम लेने में अपराध करते हैं तो भक्ति में हमारी प्रगति रुक जाती है। तो ये अपराध शून्य हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे कोई अड़चन आते हैं जिनकी वजह से हम अपराध कर बैठते हैं हरि नाम के प्रति। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे दो तरह के अड़चन हैं जिनको व्यवधान कहते हैं, जिनको करने से वो अड़चन बन जाती है और अपराध उससे उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे व्यवधान भी दो तरह के हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं पहले तरह का व्यवधान है वर्ण व्यवधान। वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण। जैसे जब हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन उस नाम के अक्षरों के बीच में और कोई अक्षर होते हैं, ये वर्ण होते हैं, तो ये वर्ण व्यवधान होता है। जैसे कि हरितकी, हरितकी जानते हैं ना, अमला, हरितकी, सूठ, हरितकी। या तो आप सोच लीजिए हठिकरी, बंगाली में हठिकरी है, तो ह और शेष में क्या है, री, तो ह और री, लेकिन बीच में क्या है, थिका। तो ये थिका बीच में होने के कारण ये ह और री अलग हो गए, इसलिए ह री का पूर्ण जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, फिर भी थोड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि ह री हमने अगर कहा तो कर लिया, उसमें बीच में कुछ आ गया है ना, तो ह री हो गया, लेकिन फिर वो ह री का थोड़ा कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन ज्यादा लाभ। वो बताते हैं कि मुसलमान लोग भी कभी कभी हराम कहते हैं, मतलब कोई चीज को धिक्कारना हो तो हराम, तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति इसको ऐसे जब को नाम, राम, राम का नाम लेते हैं, हे राम, हाँ राम कहते हैं, नहीं जानते हो, जैसे अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया था नारायण, उसी तरह से वो शास्त्रों में बताया जाता है पुराण में कि एक मुसलमान व्यक्ति था, उसको एक जंगली सुअर ने आक्रमण किया और उसके दांत जो उसमें घुसा दिए शरीर में, तो मृत्यु के समय वो हराम 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 चिल्ला रहा था, तो उसको मुक्ति मिल गई क्योंकि उसने राम का नाम लिया, उसको मालूम नहीं था कि ये राम का नाम है। तो ये नामाभास, इस तरह से नामाभास लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। और दूसरा तरह का व्यवधान है तत्व व्यवधान, मतलब जिसमें जो व्यक्ति हरि नाम ले रहा है वो तत्व को, सिद्धांत को नहीं जानता, वो ये नहीं स्वीकार करता कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे नहीं सोचता, जैसे कि मायावादी लोग हैं। मायावादी लोग भी भगवान का नाम जप करते हैं, वो भी नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन उनका नाम जप करने का उद्देश्य क्या है, भगवान हो जाना, वो खुद भगवान हो जाना चाहते हैं, तो वो भी संकीर्तन करते हैं, लेकिन संकीर्तन करके वो चाहते हैं हम भी भगवान हो जाए, तो वो ये नहीं जानते कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान एक व्यक्ति है, और क्योंकि उनके उनको वो तत्व या सिद्धांत तो सही तरह से नहीं मालूम, इसलिए नाम का फल उनको कभी भी नहीं मिल सकता, अर्थात कृष्ण प्रेम ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त करना असंभव है। इसके बाद हरिदास ठाकुर बताते हैं कि इसलिए चाहिए
कि जो भक्त सिद्धि चाहता है भक्ति मार्ग में, वो एक गुरु के पास जाए, वहाँ से हरि नाम ले और बड़े ध्यान से प्रेम से हरि नाम का आश्रय ले, और इस तरह से उसके हृदय में जो भी अनर्थ हैं वो कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे अनर्थ कम हो जाएंगे नाम का स्वाद उसे मिलेगा, नाम उसकी जिह्वा के ऊपर नृत्य करना शुरू करेगा, उसके हृदय में भक्ति के भाव प्रकट होने लगेंगे और हृदय में फिर शुद्ध प्रेम जागृत हो जाएगा। और ऐसे शुद्ध प्रेम की प्राप्ति करने से माया दूर
भाग जाएगी ऐसे भक्त से, जैसे कि हरिदास ठाकुर खुद से उनसे भाग गई थी माया। इसके बारे में आज शाम को हम 7 बजे के बाद देखेंगे। आज आपको एक सिनेमा दिखाएंगे हरिदास ठाकुर के ऊपर, तो उसमें भी हम देख सकेंगे कैसे माया भी स्वयं भाग गई, क्योंकि हरिदास के हृदय में शुद्ध प्रेम था। फिर हरिदास कहते हैं कि हरि नाम सब कुछ प्रदान करने के लिए सर्व समर्थ शक्तिमान है। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन कालः। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया है, भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति प्रदान की है, इसलिए हरि नाम हमें सब कुछ देने में पूरी तरह से समर्थ है। और ये भगवान श्री कृष्ण का भेंट है जीवों के लिए, और ये हरि नाम का भेंट स्वीकार करने के लिए जीव की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये अभी तीसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न महाप्रभु का क्या था? हरि नाम की महिमा। तो हरि नाम की महिमा के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दे दिया। अब वो उत्तर देने वाले हैं कि इस हरि नाम को शुद्ध तरह से लेने के लिए जीव की क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली बात हरिदास ठाकुर कहते हैं, श्रद्धा। ये हरि नाम का जाप लेना ये किसी भी भौतिक चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, नहीं किसी देश काल पात्र के ऊपर निर्भर है। कौन अमीर है, गरीब है, शिक्षित है, नहीं है, किस उम्र का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, पुरुष है, सुंदर है, काला है, गोरा है, लड़का है, लड़की है, कोई ऐसे भौतिक चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। केवल इसमें श्रद्धा चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने श्रद्धा से नाम का आश्रय लिया, केवल नाम ग्रहण नहीं, नाम आश्रय लिया, और अगर वो कपट से मुक्त हो गया, और अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भक्तों के कुटुंब में एक सदस्य बना लिया, और ऐसे भक्त को अगर कृष्ण के भक्तों के कुटुंब में उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो फिर ये व्यक्ति हरि नाम लेने के लिए योग्य है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिर में आखिरी पॉइंट हरिदास ठाकुर बताते हैं कि हरि नाम शुद्ध तरह से किसी को अगर लेना हो तो ये आवश्यक है कि कृष्ण भगवान के भक्तों के कुटुंब में वो शामिल हो जाए। इसका मतलब है कि अकेले में हरि नाम नहीं लिया जा सकता है। कोई सोचेगा कि वो हरिदास ठाकुर की नकल करेगा, कहीं एकांत स्थान में जाकर जाप करेगा 64 माला 108 माला, नहीं हो पाएगा। हरिदास ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों का संग लिया, आश्रय लिया, उनके संग में रहे, और पहले भी अद्वैत आचार्य और अन्य वैष्णवों के संग में वो रहा करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर सारे वैष्णवों ने हमको प्रेम से स्वीकार किया, जो कि कृष्ण के कुटुंब हैं, तो फिर हम हरि नाम लेने के लिए योग्य बन जाते हैं। इसका मतलब है कि वैष्णवों का संग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें बड़े आदर से भक्तों के संग में रहना चाहिए। कभी भी भक्तों को साधारण नहीं समझना चाहिए, भक्तों के दोष हमें नहीं लेने चाहिए, देखने चाहिए, हमें आभार व्यक्त करते रहना चाहिए हमेशा कि भगवान ने हमें उनके भक्तों का संग प्रदान किया है। और ऐसे संग में आकर हरिदास ठाकुर कहते हैं जीव को सदा जप करते रहना चाहिए, फिर उसे वो शुद्ध नाम आसानी से प्राप्त हो जाएगा। साथ साथ जीव को चाहिए कि जो भी चीजें
भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल हैं उनको स्वीकार
करना चाहिए दृढ़ता से, और जो भी चीजें प्रतिकूल हैं उनको त्यागना चाहिए दृढ़ता से। अनुकूल यस्य संकल्पः प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। जो अनुकूल है स्वीकार करो दृढ़ता से, जो प्रतिकूल है वर्जनम उसको त्याग दो। और अन्य जो भी धर्म के पद्धतियां हैं, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ये देवी की पूजा वो देवी की पूजा, या ये तपस्या वो व्रत, ये मंगलवार वो बुधवार, वो सब त्यागना चाहिए। केवल भगवान श्री कृष्ण के पूरी श्रद्धा से नाम का आश्रय लेना चाहिए, और इस तरह से परम सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम जीव के लिए निश्चित है। फिर हरिदास ठाकुर ने अपना प्रवचन बंद किया और फिर से चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाके उनके चरण कमल उन्होंने पकड़ लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए उनके दो प्रश्नों के उत्तर सुन के। तो अब तक चैतन्य महाप्रभु ने कितने प्रश्न पूछे हैं? 3। पहला प्रश्न था बद्ध जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, इसका उत्तर क्या था? हरिनाम से। दूसरा प्रश्न था कृपया हरिनाम की महिमा कहिए बताइए, तो हरिदास ठाकुर ने हरिनाम की महिमा बताई। और तीसरी बात जीव की योग्यता क्या होनी चाहिए शुद्ध नाम लेने के लिए, तो हरिदास ठाकुर ने कैसे कैसे गुण बताए, श्रद्धावान होना चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए, कपट से मुक्त होना चाहिए, और भक्तों के संग में नम्रता से रहना चाहिए, भक्तों का आदर सत्कार करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति करे और निरंतर नाम लेते रहे तो कृष्ण प्रेम को शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकता है। श्रील हरिदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। गौ प्रेमानंदे है कि नामाभास के स्तर में जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है तो किसकी मुक्ति? वैसे ये मुक्ति शब्द ज्यादातर ज्ञान योगियों के संबंध में पाया जाता है। भक्त की मुक्ति क्या होती है? मुक्तिर्हत्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्थित होना ये मुक्ति है, असली मुक्ति है, क्योंकि ये जीव का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कृष्ण का इष्टदार। तो अगर जीव केवल निरंतर कृष्ण की सेवा करते रहे तो वह मुक्त है, जीवन मुक्त से उच्चते। तो भक्त के लिए ये मुक्ति है। लेकिन जो ज्ञानी वगैरह हैं वो चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाएं, लेकिन भक्त की ऐसी इच्छा नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में क्या कहा है? जन्म जन्मनीश्वर भवतात भक्तिर अहितु की त्वयी। मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहितु की भक्ति चाहता हूं, वो मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा नहीं चाहते हैं। ये मुक्ति ज्यादातर उन लोगों से संबंधित है जो कर्मकांडी हैं, ज्ञान योगी हैं। हालांकि भक्त को तो मुक्ति मिल ही जाती है। भक्त को धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं कि हमें स्वीकार कीजिए, लेकिन भक्त कहता नहीं, मुझे कोई आपके लिए रुचि नहीं है, मुझे केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण की सेवा चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? भगवद गीता में श्री भगवान उवाच ऐसे कई बार बताया जाता है, तो ये प्रमुख नाम में है या मुख्य नाम या गौण नाम में है, आप क्या समझते हैं? भगवान का अर्थ क्या है? जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो जो व्यक्ति वास्तव में श्री कृष्ण को जाने और इस दृष्टि से वो भगवान बुलाते हैं के लिए नाम हो जाता है। लेकिन कई हैं जो किसी को भी भगवान बुला सकते हैं का नहीं जानते हैं, तो वो लोग किसी को भी देवता को उनको भी भगवान, तो ऐसे लोगों को मुख्य नाम नहीं तो है, तो वो राम करेगा।